पृष्ठ संख्या 553, अध्याय 21, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा। उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा भारतीय पुरातत्व विशेषकर उत्तर भारत के पुरातत्व की एक जानी पहचानी पात्र परंपरा है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तर भारत के पुरातत्व में यह पात्र परंपरा तिथि क्रम का वह सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करती है जिस पर उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा के पहले की पुरातात्विक संस्कृतियों के तिथि क्रम का निर्धारण किया जा सकता है। इस पात्र परंपरा के आधार पर बाद में विकसित होने वाली संस्कृतियों का तिथि क्रम भी निर्धारित किया जाता है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार भारत के पुरास्थलों पर यह पात्र परंपरा उसी प्रकार विशिष्ट है जिस प्रकार यूरोप महाद्वीप के भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में टेरा सिगिलाटा नाम की पात्र परंपरा है। इस तरह के पात्र खंड सर्वप्रथम तक्षशिला के उत्खनन से सन 1934 में प्रकाश में आए थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला के पुरास्थल पर क्रमागत तीन टीले हैं जिन्हें क्रमशः भी टीला, सिरकप तथा सिरसुख कहा जाता है। तक्षशिला के भी टीले से उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के मृदभांड मिले थे। मार्शल ने इसे काली काचित पात्र परंपरा के नाम से अभिहित किया था। उनका यह विचार था कि यह पात्र परंपरा इसी से मिलती जुलती यूनानी पात्र परंपरा की अनुकृति मात्र है। भारतीय पुरातत्व में प्रारंभ में मिट्टी के बर्तनों का कोई खास महत्व नहीं समझा जाता था, इसलिए इस पात्र परंपरा के महत्व को उस समय नजरअंदाज कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व में प्रारंभ में मिट्टी के बर्तनों का कोई खास महत्व नहीं समझा जाता था इसलिए इस पात्र परंपरा के महत्व को उस समय नजरअंदाज कर दिया गया। नामकरण। यह एक संयोग की बात है कि आरंभ में उत्तरी भारत के जितने पुरास्थलों से इस तरह के पात्र खंड प्राप्त हुए वे अधिकांशतः काले रंग के ही थे। इस तरह के पात्रों पर जो एक विशेष प्रकार की चमक दिखलाई देती है उसे पुराविदों ने प्रारंभ में पॉलिश समझ लिया। फलतः इस पात्र परंपरा का नामकरण मार्टिमर व्हीलर एवं कृष्णदेव द्वारा उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा ओबदार पात्र परंपरा किया गया था। परंतु कुछ ही समय के बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि इस तरह के मिट्टी के बर्तनों के ठिकरे केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में भी पृष्ठ संख्या 554 मिलते हैं। इस पात्र परंपरा के नाम के साथ उत्तरी विशेषण जोड़ा जाए या नहीं इस विषय में पुराविदों में मतभेद है। इसी प्रकार पात्रों का रंग केवल काला ही नहीं मिलता है बल्कि अन्य कई रंग भी मिलते हैं जैसे सुनहरे, रुपहले, नीले, नारंगी, चॉकलेटी तथा गुलाबी आदि। ऐसी स्थिति में कुछ पुराविदों के अनुसार इसके साथ काला विश्लेषण लगाना बहुत सार्थक नहीं है। प्रारंभ में पुराविद जिसे पॉलिश समझ बैठे थे वह पॉलिश न होकर काचित प्रलेप था है। इन उपर्युक्त कतिपय आपत्तियों के बावजूद इस विशिष्ट पात्र परंपरा के साथ अब भी NBP शब्द जुड़ा हुआ है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक, लंबे समय से पुराविद इस पात्र परंपरा को NBP के नाम से पुकारने के अभ्यस्त हो गए हैं। दो, इसके प्रथम दो विशेषणों उत्तरी तथा काले रंग को लेकर जो आपत्तियां उठाई जाती हैं वे आंशिक रूप में ही सही है। यद्यपि यह सही है कि इस तरह के पात्रखंड भारत के पूर्वी दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों से भी मिले हैं लेकिन इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन मुख्य रूप से उत्तरी भारत और उसमें भी मध्य गंगा घाटी पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ही दिखलाई पड़ता है। इस भौगोलिक दायरे के बाहर NBP के ठिकरे मिलते तो हैं लेकिन बहुत कम संख्या में। ऐसा अनुमान किया जाता है कि गंगा घाटी के बाहर यह पात्र परंपरा व्यापार वाणिज्य बौद्ध धर्म के प्रसार और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के माध्यम से संभवतः पहुंची होगी। यद्यपि इस कथन के अपवाद के रूप में भी कतिपय पुरास्थल मिले हैं उदाहरणार्थ उज्जैन जो इस भौगोलिक सीमा से बाहर है, वहां पर एनबीपी के बहुसंख्यक ठीकरे मिले हैं। अतः यह कहना पड़ता है कि इनका निर्माण उज्जैन में इसी पुरास्थल पर हुआ होगा। एनबीपी पाटखंड यद्यपि कई रंगों में मिलते हैं, तथापि मुख्य रंग हुआ होगा, तथापि मुख्य रंग काला ही है। अतः इसके नाम के साथ काले विशेषण की सार्थकता को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है। पॉलिश निश्चय ही काचित प्रलेप है। इस तरह उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के विशेषणों की अपनी सार्थकता है, इसलिए इसे अभी भी पुराने नाम से ही अभिहित किया जा सकता है। प्रसार, भौगोलिक प्रसार की दृष्टि से यह पात्र परंपरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के एक विस्तृत भूभाग में फैली हुई है। उत्तर पश्चिम में इस तरह के पात्रखंड बेग्राम अफगानिस्तान, तक्षशिला रावलपिंडी जिला पाकिस्तान, चरसद्दा पेशावर जिला पाकिस्तान और उदयग्राम पेशावर जिला पाकिस्तान आदि से मिले हैं। उत्तर में इस प्रकार के ठीकरे नेपाल की तराई क्षेत्र से स्थित तिलौराकोट से प्राप्त हुए हैं। पश्चिम भारत में गुजरात प्रांत पृष्ठ संख्या 555 के अंतर्गत अरब सागर के तट पर स्थित प्रभास पाटन इसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। महाराष्ट्र में नाशिक तथा बहाल एनबीपी के दो प्रमुख पुरास्थल हैं। पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के तामलुक चंद्रकेतुगढ़ और बांग्लादेश के बानगढ़ दीनाजपुर जिला तथा पहाड़पुर राजशाही जिला से भी इस प्रकार के पात्रखंड मिले हैं। दक्षिण पूर्व में इसका प्रसार उड़ीसा प्रांत के शिशुपालगढ़ पुरी जिला तक, रेखा मानचित्र एक, भारत उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा का प्रसार पृष्ठ संख्या 556 मिलता है। दक्षिण भारत में इस प्रकार के पात्रखंड नागार्जुन कोंडा आदि से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर तथापि उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा का आधिक्य गंगा के मैदान तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही मिलता है। पात्र प्रकार, उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा का निर्माण भली भांति तैयार की गई तथा अच्छी प्रकार से गूथी एवं मर्दित मिट्टी से किया जाता था। यह पात्र परंपरा सत्वर गति से चलने वाले चौक पर निर्मित प्रतीत होती है। इस रेखाचित्र दो काली चमकीली उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा प्रमुख पात्र प्रकार। इस पात्र परंपरा के बर्तन अत्यंत पतले तथा हल्के मिलते हैं। बर्तनों की औसत मोटाई के आधार पर इसे तीन श्रेणियों मोटे, थिक, मध्यम, मीडियम एवं पतले थीन पृष्ठ संख्या 557 में विभाजित किया जा सकता है। बर्तन अत्यंत ऊंचे तापक्रम वाले आवों में पकाए गए हैं, इसीलिए उनमें धातु के बने हुए बर्तनों की तरह की सफाई, फिनिश और खनक मिलती है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र प्रकार अत्यंत सामान्य ढंग के मिलते हैं। अंदर की ओर मुड़े हुए अथवा सीधे किनारे वाली थालियां, सीधे और उन्नतोदर कटोरे, ढक्कन, सुस्पष्ट कोख वाली हाड़ियां तथा छोटे आकार के कलश प्रमुख पात्र प्रकार हैं। एनबीपी के बहुसंख्यक पात्र खंड काले रंग के मिलते हैं, लेकिन सुनहले, रुपहले, चॉकलेटी, गुलाबी रंग, गुलाबी एवं नीले रंग के ठिकरे भी मिलते हैं। इस मृदभांड परंपरा के बर्तनों पर एक विशेष प्रकार की चमक अथवा दीप्ति मिलती है। इसकी पॉलिश के विषय में पिछले 3 दशकों में खान बहादुर सनाउल्ला, पुरा रसायनज्ञ बीबी लाल, केटीएम हेगड़े, एचसी भारद्वाज और बीमसन आदि ने रासायनिक परीक्षण तथा विश्लेषण किया है, लेकिन इन सभी अध्येताओं के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। सनाउल्ला के अनुसार इस पात्र परंपरा के काले प्रलेप में लगभग 13% लौह ऑक्साइड है, जिसकी वजह से इसका रंग काला है। फेरस सिलिकेट के कारण रंग में विभिन्नता मिलती है। फेरस लाइम एवं फेरस मैग्नेशिया सिलिकेट के कारण इस पर एक विशेष प्रकार की चमक मिलती है। पूरा रसायनज्ञ लाल के अनुसार काली चमक का रहस्य बर्तन तैयार करते समय उसकी सतह पर लगाया गया एक खास प्रकार का मिट्टी का घोल है। हेगड़े इस पात्र परंपरा का पर काली चमक का कारण मैग्नेटिक ऑक्साइड की हल्की परत को मानते हैं। ऐसी भारद्वाज का सुझाव है कि काले रंग और चमक का कारण कार्बन की मौजूदगी तथा मैग्नेटिक फेरस सिलिकेट है। इन उपर्युक्त मतों के विपरीत बीमसन का मत है कि एनबीपी और यूनान की ब्लैकवेयर में कई खास अंतर है। यूनान की ब्लैकवेयर चुंबकीय है जबकि एनबीपी अचुंबकीय है। अगर पत्ती अथवा ब्लेड की धार को यूनानी ब्लैकवेयर या ब्लैकवेयर पर चलाया जाए तो बिना किसी अवरोध के निर्बाध गति से चलती जाएगी, लेकिन एनबीपी की सतह पर यह खरोचने लगती है। यूनान की ब्लैकवेयर की को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में रखने पर कोई परिवर्तन अथवा अंतर नहीं होता है, जबकि एनबीपी में इतने तापक्रम पर अलग अलग ढंग के परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं। उसके अनुसार लाल रंग की मिट्टी से मिलते जुलते अकार्बनिक पदार्थ के घोल में डुबोने के बाद उन्हें आवे पृष्ठ संख्या 558 में रखकर उसको बंद कर दिया जाता था, जिससे बर्तन पकने के बाद धीरे धीरे ठंडे हो। इससे बर्तनों में विशेष चमक और मजबूती आ जाती थी। चित्रण तथा अलंकरण। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, कौशाम्बी और श्रावस्ती तथा महाराष्ट्र प्रदेश के बहाल, धुले आदि पुरास्थलों से एनबीपी के ऐसे नमूने प्राप्त हुए हैं जिन पर चित्रकारी मिलती है। प्रमुख अलंकरण अभिप्रायों में पट्टी अथवा धारियां। चित्र 3, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा चित्रित पात्र। बिंदु समूह, रेखाएं, संकेंद्रित वित्र, प्रतिच्छेदी वृत्त, अर्धवृत्त, लहरिया, पाश आदि है। अलंकरण काली, गुलाबी, पिंगल, गहरी भूरी तथा बादामी सतह पर मिलते हैं। ये सभी चित्रण गाढ़े रंग से किए गए हैं। चित्रित धूसर पात्र परंपरा का एनबीपी के चित्रण अभिप्रायों पर प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। इन चित्रणों के अतिरिक्त कुछ पात्र खंडों, विशेषकर थाली एवं कलशों के अंदर वृत्त, बिंदु, समूह, चक्र तथा वृषभ, श्रृंग आदि की ठप्पा लगाकर डिजाइनें बनाई गई हैं। पृष्ठ संख्या 559। चित्र 4, कौशाम्बी, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा के चित्रित पात्र, सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड स्पष्टतः जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त होने वाले मृदभांड नहीं थे। यह अभिजात्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा मुख्यतः भोजनालय में प्रयोग में लाई जाने वाली पात्र परंपरा थी। इस कथन की पुष्टि सोनपुर, कुम्हरार, बैराट तथा रोपड़ आदि के उत्खनन से मिले कीलक लगे अथवा जोड़े गए रिवेटेड पात्रों से हो जाती है। इन पुरास्थलों से तांबे की पतली तार, पृष्ठ संख्या 560, कॉपर वायर अथवा पीन से जोड़े गए फूटे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह इंगित होता है कि इन बर्तनों का मूल्य बहुत ज्यादा होता था। संभवतः कम मात्रा में पात्र निर्माण अथवा उत्पादन और लागत के अधिक बैठने के कारण इस प्रकार के पात्रों की आपूर्ति सीमित मात्रा में ही हो पाती थी। संबद्ध अन्य पात्र परंपराओं की तुलना में अधिकांश पुरास्थलों पर एनबीपी के आवृत्ति के प्रतिशत के कम होने से ही यही संकेत मिलता है। कालानुक्रम। उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा का भारतीय पुरातत्व में तिथि क्रम की दृष्टि से अपना एक विशिष्ट महत्व है। जब तिथि निर्धारण की रेडियो कार्बन प्रणाली प्रचलित नहीं हुई थी, तब उत्तरी भारत की विभिन्न पुरातात्विक संस्कृतियों का तिथि क्रम इसी पात्र परंपरा के आधार पर निश्चित होता था। स्तरीकरण। पुरातात्विक दृष्टि से तक्षशिला, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और श्रावस्ती के उत्खननों से उत्खननों के आधार पर एनबीपी के तिथि क्रम को सुदृढ़ आधार मिला। तक्षशिला के उत्खनन से इस पात्र परंपरा के लगभग 22 पात्र खंड उपलब्ध हुए थे, जिनमें से 18 भीर के टीले से प्राप्त हुए थे। इनमें से 17 पात्र खंड उस स्तर के नीचे के स्तरों से प्राप्त हुए थे जिससे सिकंदर के सिक्के मिले थे। प्राचीन भारत में सिकंदर के आक्रमण की तिथि 326 ईसा पूर्व है। इस प्रकार तक्षशिला के भीर टीले के उस स्तर की तिथि जिससे सिकंदर के सिक्के मिले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध मानी जा सकती है। इस स्तर के नीचे का जमाव 2.20 से 2.50 मीटर था, जिसे लगभग 200-300 वर्षों का समय दिया गया। यह कहा जा सकता है कि तक्षशिला में उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा का आरंभ लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तक्षशिला के दूसरे क्रमिक टीले सिरकप से 2 ठीकरे प्राप्त हुए थे, जो इस टीले के उत्तरी स्तर से लगभग 5.40 मीटर नीचे के धरातल से प्राप्त हुए थे। इस टीले पर आबादी लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तक्षशिला में एनबीपी का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना जा सकता है। यहाँ पर यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि तक्षशिला के टीले का उत्खनन स्तरीकरण के आधार पर नहीं किया गया था, इसलिए इसके विभिन्न स्तरों से प्राप्त सामग्री का कालानुक्रम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की मवाना तहसील में स्थित हसीनापुर के टीले के उत्खनन से भी एनबीपी पात्र परंपरा के तिथि क्रम पर समुचित प्रकाश पड़ा। हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री को बीबी लाल ने 5 सांस्कृतिक कालों में विभाजित किया है। इन सभी कालों के बीच सांस्कृतिक पृष्ठ संख्या 561 अंतराल मिलता है। 5वें और 4थे काल की तिथियां सिक्कों तथा अभिलेखित साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। 5वें काल में काल से गयासुद्दीन बलवन का एक सिक्का तथा खोज के दौरान ऊपरी सतह से सुल्तान शाह द्वितीय का एक सिक्का मिला था। 4थे काल की तिथि मथुरा के राजाओं तथा योद्धेयों के सिक्कों और कुषाण सिक्कों के अनुकरण पर जारी किए गए सिक्कों के आधार पर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तृतीय शताब्दी के बीच निर्धारित की गई है। तृतीय तथा चतुर्थ कालों के बीच के अंतराल की अवधि 100 वर्ष मानी गई है। इस प्रकार तृतीय काल का अंत 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। इस काल का अंत एक भयंकर अग्निकांड के फलस्वरूप हुआ था। तृतीय काल के जमाव की औसत मोटाई 2.70 मीटर मिलती है, जिसे 6 उपकालों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उपकाल की अवधि 50 वर्ष मानते हुए तृतीय काल की संपूर्ण अवधि लगभग 300 वर्षों की मानी गई है। इस आधार पर हस्तिनापुर में एनबीपी के तृतीय काल को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में रखा गया, इसलिए यह कहा जा सकता है कि हस्तिनापुर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व तक एनबीपी का प्रचलन था। इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील में स्थित कौशाम्बी के टीले के उत्खनन से भी एनबीपी पात्र परंपरा के तिथि क्रम के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। कौशाम्बी के विस्तृत टीले पर इस मृदभांड परंपरा की प्रचुरता विशेष उल्लेखनीय है। कौशाम्बी के टीले के उत्खनन के परिणाम स्वरूप 25 निर्माण कालों स्ट्रक्चरल पीरियड के प्रमाण मिले हैं। इन 25 निर्माण कालों को पहले 4 और संप्रति 5 सांस्कृतिक कालों में विभाजित किया गया है। 4थे सांस्कृतिक काल की तिथि का निर्धारण 24वें निर्माण काल से प्राप्त हूण राज एवं तोरमाण लेख अंकित राज मुद्रांकों सीलिंग के आधार पर किया गया है। हूण राज तोरमाण के शासन के आरंभ की तिथि सन 510 से 515 के बीच मानी जाती है। इस आधार पर कौशाम्बी के 24वें निर्माण काल की तिथि 510 ईस्वी मानी गई है। कौशाम्बी के प्रत्येक निर्माण काल की औसत अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकार 4थे संप्रति 5वें काल का अंत 585 ईस्वी और प्रथम काल का आरंभ 1165 ईस्वी संप्रति 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। कौशाम्बी का तृतीय संप्रति चतुर्थ सांस्कृतिक काल एनबीपी का काल था। कौशाम्बी के विभिन्न सांस्कृतिक कालों के बीच किसी प्रकार का अंतराल नहीं मिलता है। इस प्रकार कौशाम्बी में एनबीपी के तृतीय संप्रति चतुर्थ काल का तिथिक्रम 605 ईसा पूर्व से 45 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांडों से संबंधित अनेक पुरास्थल अभी तक खोज निकाले गए हैं और इनमें से कुछ पुरास्थलों पर उत्खनन भी हुआ है। ऐसे पुरास्थलों में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित श्रावस्ती के टीले का उत्खनन पृष्ठ संख्या 562 उल्लेखनीय है। यहाँ पर के सिन्हा के नेतृत्व में उत्खनन हुआ है। सिन्हा का मत है कि एनबीपी के वास्तविक महत्व को उसके सही पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य में रखकर ही आंका जा सकता है। एनबीपी दो सर्वथा भिन्न संदर्भों में मिलती है। प्रथम आरंभिक तथा द्वितीय निश्चयन परवर्ती संदर्भ है। इस आधार पर एनबीपी का तिथिक्रम निर्धारित किया जा सकता है। एनबीपी पात्र परंपरा का प्रारंभिक चरण तक्षशिला, कौशाम्बी, राजघाट, श्रावस्ती, वैशाली तथा राजगिरी में प्राप्त होता है। इसका परवर्ती स्वरूप चरसद्दा, रोपण, हस्तिनापुर, उज्जैन और नौदा टोली में मिलता है। आरंभिक पुरास्थलों जैसे कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली तथा राजगीर में इसका तिथिक्रम 500 से 300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। परवर्ती श्रेणी के पुरास्थलों जैसे रोपण, हस्तिनापुर, कुम्भरार तथा उज्जैन में इसका प्रचलन लगभग 350 ईसा पूर्व के पहले नहीं हुआ। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर एनबीपी पात्र परंपरा का जो तिथिक्रम प्रस्तावित किया गया है उससे कुछ पुरावे सहमत नहीं है। इनमें से डीएच गार्डन तथा आरईएम व्हीलर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डीएच गार्डन के अनुसार उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में एनबीपी को 400 ईसा पूर्व से पहले कदापि नहीं रखा जा सकता है। इसके व्यापक प्रचलन का काल चौथी नहीं बल्कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व प्रतीत होता है। व्हीलर की सम्मति है कि एनबीपी पात्र परंपरा के प्रचलन का काल 5वीं से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना जा सकता है। व्हीलर ने पाकिस्तान स्थित चरसद्दा और उदयग्राम से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर उत्तर पश्चिम के परिधीय क्षेत्र में एनबीपी के प्रचलन का समय 320 से 150 ईसा पूर्व के बीच तथा गंगा के मैदान में स्थित केंद्रीय क्षेत्र के पुरास्थलों पर स्थिति से कुछ शताब्दियों पहले इसके प्रचलन की संभावना व्यक्त की है। रेडियो कार्बन तिथियां। भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल से कुल मिलाकर लगभग 200 से अधिक एनबीपी पात्र परंपरा से संबद्ध स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिनमें से लगभग आधे से अधिक पुरास्थल तो केवल गांगेय क्षेत्र में ही स्थित है। इनमें से कई पुरास्थलों पर समय समय पर उत्खनन कार्य भी हुए हैं। उत्खनित पुरास्थलों में से लगभग एक दर्जन से अधिक पुरास्थलों के एनबीपी स्तरों की रेडियो कार्बन तिथियां ज्ञात हैं। ऐसे पुरास्थलों में रोपण, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, कौशाम्बी, श्रृंगबेरपुर, राजघाट, हेतिमपुर, वाराणसी, कुम्भरार, राजगीर, बेसनगर, उज्जैन तथा कायथा आदि प्रमुख है। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर एनबीपी मृदभांड परंपरा के तिथि क्रम पर नए सिरे से विचार किया जाने लगा है। जिन पुरास्थलों से अपेक्षाकृत प्राचीरतर रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हुई हैं, वे हैं अतरंजी खेड़ा, मथुरा, कौशाम्बी, राजघाट और उज्जैन आदि। पृष्ठ संख्या 563। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक यह पात्र परंपरा अस्तित्व में आ चुकी थी। इलाहाबाद जिले के की सोराव तहसील में स्थित श्रृंगबेरपुर के पुरास्थल से एनबीपी पात्र परंपरा के संबंध में एक ताप संदीप्तक उष्मा दीप्ति तिथि प्राप्त हुई है।